एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में स्वागत। आज हम समुंदर की गहराइयों में उतरेंगे और साथ ही इंसान के मन के अनजाने कोनों में भी।
हाँ, और इसके लिए हमने चुना है जोसेफ कॉनराड का एक बहुत ही मशहूर लघु उपन्यास द सीक्रेट शेयरर।
बिल्कुल, कॉनराड पोलिश मूल के लेखक थे और अंग्रेजी वो उनकी तीसरी साहित्यिक भाषा बनी। कमाल की बात है।
सही में, और उनके जो समुद्री अनुभव थे वो उनकी लेखनी में साफ दिखते हैं। मनोवैज्ञानिक गहराई, नैतिक उलझने, ये सब कॉनराड की खासियत है।
और द सीक्रेट शेयरर जो 1910 में आई, ये उनके खुद के पहले जहाजी कमांड के अनुभव पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है।
हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक समुद्री कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये असल में पहचान, नैतिकता और लीडरशिप यानी नेतृत्व के बोझ की कहानी है।
एक युवा कप्तान के अंदरूनी सफर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये मनोवैज्ञानिक समुद्री यात्रा। तो कहानी शुरू होती है सियाम की खाड़ी में।
माहौल मतलब बड़ा अजीब सा है, घुटन वाला, ठहरा हुआ सा।
हाँ, समंदर एकदम शांत है लेकिन हवा भारी है।
और यहीं हमारी मुलाकात होती है एक अनाम युवा कप्तान से।
हाँ, जो अभी अभी अपनी पहली कमान संभाल रहा है और उसके अंदर ना आत्मविश्वास की बहुत कमी है, एक गहरी असुरक्षा।
उसे लगता है जैसे जैसे वो इस जहाज पर अपने ही लोगों के बीच एक बाहरी आदमी हो, एक बहुरूपिया।
बहुरूपिया ये शब्द बहुत अहम है। उसे लगता है वो इस रोल के लायक ही नहीं है।
हाँ, और इसी छटपटाहट में वो एक रात अकेले ही जहाज की निगरानी करने का फैसला करता है।
हाँ, मतलब वो कुछ साबित करना चाहता था शायद, या बस अकेले रहना चाहता था।
हाँ, एक ऐसा काम जो सामान्यतः उसके पद के हिसाब से मतलब छोटा है। शायद वो खुद को या जहाज को बेहतर समझना चाहता है।
बिल्कुल, और उसी अकेली शांत रात में जब वो डेक पर टहल रहा होता है, उसकी नजर जहाज के किनारे लटकी रस्सी की सीढ़ी पर पड़ती है,
और
उस सीढ़ी से चिपका हुआ है एक नग्न आदमी जो अभी अभी
समंदर के अंधेरे से निकला।
हाँ,
है बिल्कुल।
एकदम। और एक पल के लिए तो सबको जैसे थम सा जाता है, रहस्य और अनिश्चितता हवा में तैरने लगती है।
और यही कहानी का रुख पलटता है ना? कप्तान उस आदमी को चुपचाप जहाज पर खींच लेता है।
हाँ, और जैसी वो उसे देखता है, उसे एक अजीब सा गहरा अपनापन महसूस होता है।
या आदमी लेगेट, नहीं उसका नाम लेगेट है, वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही कप्तान जैसा नहीं है, मतलब कद काठी, उम्र, वो सब तो है ही।
उससे कहीं ज्यादा ऐसा लगता है जैसे वो कप्तान का ही कोई अक्स हो, उसका प्रतिबिंब, जिसे हम डुपलगैंगर कहते हैं।
हाँ, डुपलगैंगर, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप।
जैसे अपने ही किसी छिपे हुए हिस्से से मिलना,
बिल्कुल,
वो पहलू जो शायद साहसी भी है और खतरनाक भी, जिससे कप्तान शायद अब तक अनजान था।
और फिर लेगेट अपनी कहानी बताता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है।
हाँ, वो पास के जहाज सिफोरा का फर्स्ट मेट था और एक भयानक तूफान के दौरान जब जहाज बिल्कुल डूबने वाला था,
तब क्या हुआ?
तब उसने एक नाविक को मार डाला था। वो नाविक जो हुक्म मानने से इनकार कर रहा था और सबकी जान खतरे में डाल रहा था।
ओहो,
लेगार्ड का मानना है कि ये जरूरी था, जहाज बचाने के लिए ये करना ही पड़ा।
लेकिन कानून की नजर में?
कानून की नजर में तो वो एक कातिल है, एक भगोड़ा।
और यहाँ कप्तान एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लेता है।
हाँ, बिना ज्यादा सोचे समझे, तर्क, सुरक्षा सब एक तरफ रखकर वो लेगेट को अपने केबिन में छिपा लेता है।
ये किसी लॉजिक से नहीं बल्कि एक गहरी मतलब अवर्णनीय सहानुभूति से होता है, एक पहचान का बंधन।
जैसे वो लेगेट में खुद को देख रहा हो, अपने किसी अनजान रूप को।
यहीं से असली मनोवैज्ञानिक तनाव शुरू होता है। कप्तान अब सिर्फ कमांडर नहीं है, वो एक राज का रखवाला भी है।
बिल्कुल, उसे लेगेट को सबसे छुपाना है, खासकर उस स्टीवर्ट से जो बड़ा जिज्ञासु है, बार बार केबिन में आता जाता है।
हर राहट, दरवाजे पर हर दस्तक उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती होगी।
हाँ, उसका अपना केबिन जो सुरक्षा की जगह होनी चाहिए, अब एक प्रेशर कुकर जैसा बन गया है।
हाँ,
डर और दबाव का केंद्र,
और इसी दबाव में कप्तान बदलने लगता है।
है ना?
हाँ
बिल्कुल, वो जो पहले अनिश्चित और असुरक्षित था, अब उसे चालाक बनना पड़ रहा है।
सतर्क रहना पड़ रहा है।
बिल्कुल,
लेगेट को छिपाने की जरूरत उसे मजबूर करती है कि वो ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा सोचे और अनजाने में ही सही ज्यादा अधिकार पूर्वक व्यवहार करें।
ये बहुत दिलचस्प है, जैसे लेगेट को बचाने की कोशिश में वो असल में खुद को बना रहा है।
हाँ, लेगेट एक तरह से कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक का काम करता है। वो कप्तान के अंदर दबे हुए साहस को, निर्णय लेने की क्षमता को
और शायद हिंसा की संभावना को भी
सदैव पर लाता है। वो सब कुछ जिससे कप्तान शायद अब तक अनजान था या जिसे स्वीकार करने से डरता था, ये उसके लिए एक तरह की दीक्षा है, नेतृत्व की आग में तपना।
हाँ, और दोनों का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। लेगेट जो ज्यादा आत्मविश्वासी लगता है, जिसने अपनी परीक्षा का सामना कर लिया है सेफोरा पर, वो अब पूरी तरह कप्तान पर निर्भर है। उसकी बस एक ही इच्छा है, जिंदा रहना, आजाद होना।
और वो कानून को अपने नजरिए से देखता है, उसे अन्यायपूर्ण मानता है।
बिल्कुल, वही कप्तान जो पहले शक में घिरा था, अब लेगेट के जरिए अपनी छुपी हुई ताकत को महसूस कर रहा है।
लेगेट उसे वो आईना दिखाता है जिसमें कप्तान को अपनी पहचान की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। एक तरह से दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं,
भले ही ये रिश्ता खतरों से भरा हो।
और खतरा तब और बढ़ जाता है जब सेफोरा का कप्तान कैप्टन आर्चबोल्ड लेगेट की तलाश में इस जहाज पर आ जाता है।
उफ, जरा सोचिए उस सीन के तनाव को। युवा कप्तान को आर्चबोल्ड का स्वागत करना है, उससे एकदम शांत दिखने वाली बातचीत करनी है
और ऐसा नाटक करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि लेगेट कुछ ही फीट दूर बाथरूम में सांस रोक के छिपा है।
ये कप्तान के लिए धोखे और आत्मनियंत्रण की जबरदस्त परीक्षा है।
और कैप्टन आर्चबोल्ड, वो कैसा है?
वो एकदम कठोर लकीर के फकीर वाली नैतिकता का प्रतीक है, जो सिर्फ नियमों को जानता है, परिस्थितियों की परवाह नहीं करता।
उसके सामने हमारे युवा कप्तान की स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वो कानून तोड़ रहा है, लेकिन शायद एक गहरे मानवीय स्तर पर सही कर रहा है, ये सवाल उठता है।
हाँ, लेकिन कप्तान इस परीक्षा में सफल होता है। वो आर्चबोल्ड को यकीन दिला देता है कि लेगेट उसके जहाज पर नहीं है।
और इस सफलता से उसका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा।
बिल्कुल, साफ तौर पर बढ़ता है। उसने न सिर्फ अपना राज बचाया, बल्कि बाहरी दुनिया के सामने अपनी कमान संभालने की क्षमता भी जैसे साबित कर दी।
लेकिन ये कहानियां खत्म नहीं होती। लेगेट हमेशा के लिए तो छिपकर नहीं रह सकता।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता है, वो कप्तान से एक आखिरी मदद मांगता है।
किरा?
उसे कोरिंग नाम के एक वीरान द्वीप के पास उतार दिया जाए, ताकि वो तैरकर भाग सके, अपनी आजादी पा सके।
और कप्तान इसके लिए तैयार हो जाता है?
हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। उसे जानबूझकर जहाज को जमीन के इतने करीब ले जाना होगा।
मतलब खतरनाक हद तक करीब?
हाँ, इतना करीब कि जरा सी चूक और पूरा जहाज चट्टानों से टकराकर तबाह हो सकता है।
ये तो सिर्फ एक समुद्री पैंतरा नहीं है, ये उसकी कमान की चुरांत परीक्षा है।
बिल्कुल, वो सबकी जान दांव पर लगा रहा है, अपने पूरे क्रू की, जहाज की, सिर्फ एक भगोड़े के लिए जिसे वो कुछ ही दिनों से जानता है।
चालक दल का रिएक्शन होता है?
वो दहशत में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कप्तान पागल हो गया है। चीफ मेट, जो पहले शक करता था, अब खुलेआम उसके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाता है।
लेकिन कप्तान?
कप्तान अपने फैसले पर अटल है। इस पल में वो बाहरी दबावों से जैसे ऊपर उठ चुका है। वो सिर्फ अपने अंदर की आवाज और लेगेट के साथ उस अनकहे बंधन से गाइड हो रहा है।
ये दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व कितना अकेला और कितना जोखिम भरा हो सकता है।
हाँ, और फिर आता है वो क्लाइमैक्स का क्षण। जहाज खतरनाक हद तक तट के करीब है
और लेगेट?
लेगेट चुपचाप पानी में उतर जाता है, तैरना शुरू कर देता है अंधेरे में।
और तभी कप्तान को कुछ याद आता है।
हाँ, उसे याद आता है कि उसने लेगेट को अपनी टोपी दी थी, सफेद रंग की टोपी।
और वो टोपी?
अंधेरे में पानी पर तैरती वो सफेद टोपी अचानक एक दिशा सूचक बन जाती है, एक नेविगेशनल मार्कर।
ये प्रतीकात्मक कमाल का है। टोपी जो कप्तान की पहचान और अधिकार का निशान है, उसे देना एक बलिदान जैसा है।
हाँ, लेकिन यही बलिदान विरोधाभासी रूप से जहाज को बचाता है। वो टोपी कप्तान को बताती है कि जहाज आगे बढ़ रहा है और वो सही समय पर उसे मोड़ने का आदेश दे पाता है।
ये जैसे दो स्व कप्तान और उसका प्रतिरूप लेगेट का सफल मिलन और फिर जरूरी अलगाव है, दोनों अपनी अपनी राह पर।
बिल्कुल, लेगेट आजाद है, जैसा कॉनराड लिखते हैं, एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक नया भाग्य बनाने वाला गर्वित तैराक।
और जहाज बच जाता है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो कप्तान में आया है।
हाँ, वो अब वो बहुरूपिया नहीं रहा। उसने अपनी कमान को सही मायनों में अर्जित किया है, कमाया है।
उसने खुद को पा लिया है, अपनी पहचान के साथ शांति स्थापित कर ली है।
तो अगर हम इस कहानी के सार को देखें तो ये डुपलगैंगर या प्रतिरूप का विचार बहुत बहुत अहम है।
हाँ, लेगेट सिर्फ एक भगोड़ा नहीं है, वो कप्तान के अंदर का वो हिस्सा है जिसे वो पहचानता नहीं था या जिससे शायद डरता था।
कहानी शायद यही कहती है कि खुद को पूरी तरह जानने और स्वीकार करने के लिए हमें अपने अंदर के अंधेरे या अस्वीकृत हिस्सों का भी सामना करना पड़ता है, उन्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है।
और ये कमान संभालने की परीक्षा भी है। लीडरशिप सिर्फ एक पदवी नहीं है,
ये मुश्किल फैसले लेने, जोखिम उठाने और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने से आती है। कप्तान को इस आग से गुजरना पड़ा, तभी वो सच्चा कमांडर बन पाया।
साथ ही नैतिक दुविधा का सवाल भी उठता है, क्या लेगेट का काम सही था? क्या कप्तान का उसे छुपाना सही था?
कॉनराड हमें आसान जवाब नहीं देते। वो दिखाते हैं कि जिंदगी में सही और गलत हमेशा काले और सफेद नहीं होते।
हाँ, कभी कभी नियम और सहानुभूति के बीच चुनना पड़ता है, और वो चुनाव आसान नहीं होता।
और अंत में वो अकेलापन और जुड़ाव का धागा भी है। कप्तान शुरू में अपने पद और असुरक्षा के कारण अकेला था,
फिर लेगेट के आने से उसका वो अकेलापन तो टूटा, लेकिन एक नए तरह का साझा रहस्य वाला अकेलापन बन गया।
हाँ, शायद कहानी ये भी बताती है कि जिम्मेदारी और कमान अक्सर अकेलेपन की मांग करते हैं, लेकिन अगर उस अकेलेपन में खुद पर यकीन हो
तो वो कमजोरी नहीं, ताकत बन जाता है, आत्मनिर्भरता।
कॉनराड का लिखने का अंदाज भी गौर करने लायक है। पूरी कहानी कप्तान के नजरिए से है, फर्स्ट पर्सन में।
हाँ, इससे हम सीधे उसके दिमाग में घुस जाते हैं, उसकी घबराहट, उसके शक, उसकी हर सोच को महसूस करते हैं।
ये एक बंद क्लस्ट्रोफोबिक सा माहौल बनाता है और इस एहसास को मजबूत करता है कि लेगेट शायद कप्तान के मन की ही उपज हो, एक प्रोजेक्शन।
बिल्कुल, उसके बिन की घुटन, रात का अंधेरा, समंदर का ठहराव, फुसफुसाहटें, ये सब मिलकर एक रहस्यमयी सपने जैसी दुनिया बनाते हैं।
हाँ, जहाँ हकीकत और वहम के बीच की लकीर जैसे धुंधली पड़ जाती है। पढ़ने वाला भी कप्तान के साथ उस राज में शामिल हो जाता है, उसकी चिंता महसूस करता है, हर दस्तक पर दिल उछल पड़ता है।
अंत में जब सब ठीक हो जाता है तो एक गहरी सांस आती है, एक तरह की कैथार्सिस, भावनात्मक रिहाई महसूस होती है।
लेकिन कहानी जहन में रह जाती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने अंदर कौन से गुप्त सहभागी छिपे हैं।
हमारे व्यक्तित्व के वो कौन से पहलू हैं जिनका हम सामना करने से कतराते हैं?
शायद सच्ची परिपक्वता अपने अंदर के इसी अंधेरे को, इन सीक्रेट शेयरर्स को स्वीकार करने में है, उनसे भागने में नहीं।
ये कहानी नैतिकता, न्याय और हमारे अपने अंदर चलने वाली लड़ाइयों पर सोचने का एक नया नजरिया जरूर दे सकती है।
तो ये कहानी हमें आत्म खोज की पेचीदा राहों और नेतृत्व के अकेले नैतिक बोझ की याद दिलाती है,
और ये भी दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में सहानुभूति और इंसानी जुड़ाव, चाहे वो कितने भी अप्रत्याशित क्यों ना हो, हमें रास्ता दिखा सकते हैं और शायद हमें मुकम्मल भी बना सकते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।